मानव है मेरे राम। अब मेरे राम वाल्मीकि ऋषि रामायण का सृजन करने जा रहा है। कैसे हो रहा है रामायण का सृजन? एक घटना घट रही है बीच में। ऋषि वाल्मीकि चर्या करते हुए, भ्रमण करते हुए अपने आश्रम से काफी दूर चले गए। आज एक अलग प्रकार की अनुभूति में है ऋषि वाल्मीकि, साथ में है शिष्य भरद्वाज। दोनों ऋषि चले जा रहे हैं, दिशा भी ज्ञात नहीं है कि कहां जा रहे हैं, कारण भी ज्ञात नहीं है क्यों जा रहे हैं। और देखिए देखते क्या है कि ऋषि की जो परिव्राजन की दिशा है, भ्रमण की दिशा है, गति की जो दिशा है वो अयोध्या की ओर। भरद्वाज गुरु से पूछते हैं, ऋषि वाल्मीकि से पूछते हैं कि क्या वो राम के पास जा रहे हैं। ऋषि मौन रह जाते हैं। ऋषि का कोई उद्देश्य नहीं है कि वो राम से भेंट करने अयोध्या जा रहे हैं। ऋषि वाल्मीकि तमसा नदी के तट पर ठहर जाते, तमसा नदी के तट पर ठहर जाते। नदी तट पर ऋषि समाधि की अवस्था की ओर बढ़ने लगते हैं। समाधि, बहुत बार यह शब्द आता है हमारे सुनने, जब सुख और दुख की अनुभूति समाप्त हो जाए तो वो समाधि है मेरे राम। न सुख की अनुभूति हो न दुख की अनुभूति हो, अदुख सुख, न सुख न दुख, दोनों में से किसी की भी अनुभूति नहीं। और श्वास पर नियंत्रण, ऐसा ही हो रहा है वाल्मीकि ऋषि के साथ। चेतन में अचेतन घुल रहा है, चेतन में अचेतन, कॉन्शियस में सब कॉन्शियस, असिमिलेट हो रहे, सात्वीकरण हो रहा है। मैं और तू का फर्क समाप्त होता जा रहा है। अंतश चेतना, इनसाइट पावर प्रभावी हो रही। और जब ऐसा होता है, किसी के भी साथ होता है मेरे राम, तुम्हारे साथ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। और जब ऐसा घटता है तो सुपर कॉन्शियस का क्रिएशन होता है, अति चैतन्यता आती है। अति चैतन्य में पहुंच रहे हैं, सुपर कॉन्शियस में पहुंच रहे हैं ऋषि वाले। जो बियॉन्ड एक्सीलेंस का कॉन्सेप्ट है, उत्कृष्टता से परे। उत्कृष्टता तो एक सीमा है, इज अ काइंड ऑफ लिमिट। एक्सीलेंस, बियॉन्ड एक्सीलेंस reaches towards the infinity। उत्कृष्टता से परे का अर्थ है अनंत की ओर पहुंच, सीमाओं से परे चले जाए। ऋषि वैसी ही स्थिति। और ऋषि के नेत्रों के सामने, सामने ऋषि के नेत्रों के सामने एक बहेलिया, एक निषाद, क्रौंच मिथुन यानी क्रौंच युगल कपल ऑफ चकुआ चकवी का शिकार कर देता है और नर चकवे को तीर मार देता है। घटना बहुत छोटी है, पक्षियों का शिकार होना, पशुओं का शिकार होना, और वो भी त्रेता युग में सामान्य है। राम भी तो आंखें टक रहे हैं। बहेलिया ने कोई बड़ा अपराध नहीं कर दिया, ये कोई क्राइम नहीं है, लेकिन जो घटनाएं देखने में बहुत छोटी होती हैं, उन्हीं का जो परिणाम होता है, प्रभाव होता है, जो एक्सलेंट काइंड ऑफ पीपल होते हैं उन पर बिल्कुल अलग। इसी को कहते हैं सृजन। चकवा और चकवी काम क्रीड़ा में रत थे, मादा चकवी तीव्र रुदन करने लगी क्योंकि नर चकवे की हत्या कर दी थी बहेली। दृश्य सामने है, और जो समाधिस्थ हैं ऋषि वाल्मीकि, उनके अंदर एक अंतःक्रिया होती है, ऋषि की सृजन शक्ति एक क्लिक के साथ जागृत हो जाती है, और ऋषि वाल्मीकि एक पल में ऋषि से कवि हो जाते हैं। उनके मुंह से एक श्लोक का सृजन होता है, मान शाद प्रतिष्ठाम त्वगमा शाश्वती समा। कैसा सुंदर श्लोक है, मां निषाद, हे निषाद, तुझे कभी भी युगों युगों तक प्रतिष्ठा और शांति न मिले, श्राप दे दिया ऋषि, क्योंकि तूने इस चकवे के जोड़े में से एक को जो काम मोहित था, इंटरकोर्स प्रोसीजर में था, निरपराध मार डाल, मार डाल। श्लोक है, और श्लोक कोई कवि कह रहा है एक सामान्य बात है, लेकिन लौकिक संस्कृत का पहले श्लोक का जन्म हुआ है, ये बड़ी बात है मेरे राम। क्योंकि जो संस्कृत वेदों में है वो वैदिक संस्कृत है, जिसमें व्याकरण के नियम लागू हो भी जाते हैं और नहीं भी होते तो आर्ष प्रयोग कहके छोड़ दिया जाता है, वो ऋषियों की संस्कृत। फिर जब संस्कृत भाषा का निर्माण हुआ, पाणिनि से हुआ, तब जाकर के लौकिक संस्कृत आई, जिसे हम और आप थोड़ा बहुत बोलते सुनते हैं। ये जो रूपों का निर्माण हुआ, सातव ते तम तव तान, और जो व्याकरण के नियम बने, कोई इणची बना और तमाम नियम बने, ये इसी प्रक्रिया का आगे परिणाम। तो लौकिक संस्कृत के प्रथम श्लोक का जन्म हो रहा है वाल्मीकि के मुख से, और ऋषि कवि हो। मेरा तो स्पष्ट विचार है मेरे राम कि कर्म स्थान और काल, कर्म स्थान और काल के समन्वय से ही स्वयं की नियति प्राप्त हो। हर व्यक्ति की एक नियति है, एक उसका प्रारब्ध है, प्रारब्ध अंशी नहीं होता है, प्रारब्ध सदैव संकेत देता है, लेकिन जो मूल है, जड़ है, उस संकेत को पकड़ नहीं पाता, हाँ नहीं पकड़। अल्केमिस्ट है पावलो का, उसमें देखिए हर पल संकेत मिल रहे हैं, पूरे रामायण में संकेत हैं, महाभारत में संकेत है, एपिक्स में है, मैथोलॉजी में है, और जिन्होंने संकेत को पकड़ लिया है वो अपनी नियति तक पहुंच गए। इसीलिए मैंने पहले भी कई बार कहा है मेरे राम कि भाग्य और नियति अलग हैं, एक नहीं। नियति को पकड़ना पड़ता है, हर व्यक्ति को अपनी नियति पकड़नी होती है। ऋषि वाल्मीकि ने अपनी नियति पकड़, बहुत से ऋषि हुए हैं हमारे प्राचीन काल में, कुछ को हम जानते हैं और बहुत महत्व के साथ में उनका उल्लेख करते हैं, लेकिन न जाने कितने ऐसे ऋषि हैं जो काल के गराल में खो गए। वाल्मीकि अमर हो, ऋषि वाल्मीकि को राम कथा के सृजन की नियति तक पहुंचना था, जिसके लिए तमसा नदी का ये तट स्थान बना, समय का एक विशेष खंड जिसे कांड कहते हैं, सृजन का आधार बना, और वाल्मीकि के कर्म ने रामायण को, राम के अयन को और राम को अमरता प्रदान किया। तो कर्म सबसे महत्वपूर्ण स्थान, प्रत्येक स्थान की एक ऊर्जा होती है, एनर्जी होती है, हर स्थान में वो एनर्जी नहीं होती। और काल, समय के विशेष हिस्से जो अपने वाइब्रेशंस देते हैं, इनका जो क्रिएटिव असेंबली होती है ये चरम लक्ष्य को पाती है। और ऋषि वाल्मीकि को आगे का एक पूरा मार्ग मिल गया, अमरता प्रदान हुई। वाल्मीकि को नारद जी ने पूरी राम कथा सुनाई, ब्रह्मा ने आदेश दिया और ऋषि कवि ने श्लोकों में पिरो करके रामायण का सृजन किया। 5 अध्याय 5 कांड वाल्मीकि ने स्वयं तैयार किया। वाल्मीकि ने जो बाल कांड है और उत्तर कांड है, इन दोनों का सृजन नहीं किया, केवल 5 कांड तैयार किए थे। आगे के कवियों ने ये दोनों कांड जोड़ दिए, कब जोड़ दिए और किसने जोड़ दिए ये अभी अंडर रिसर्च प्रोसीजर। और आदि रामायण या आदि वाल्मीकि के रामायण से जिसे हम जानते हैं उसमें 7 कांड हैं। और वाल्मीकि ने अयोध्या कांड से लेकर युद्ध कांड तक पूरा वर्णन राम का कर, बाल कांड और उत्तर कांड का अगर समय देखा जाए तो लगभग 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास इनका जुड़ाव होता है। ऐसे मेरे राम, राम का अयन तैयार हुआ, वाल्मीकि रामायण तैयार हुई। मानव है मेरे राम, मानव है मेरे राम। मानव है मेरे राम। अब राम के पास फिर चलते हैं, चक्रवर्ती सम्राट बन रहे हैं राम। राम अब स्वयं को चक्रवर्ती सम्राट के आदर्शों में ढाल रहे। राम अश्वमेध यज्ञ करना चाहते हैं और लक्ष्मण शत्रुघ्न को यज्ञ के विमर्श के लिए बुलाते हैं, कहते महर्षि वशिष्ठ, वामदेव, जाबाली, कश्यप, ऋषियों के साथ विमर्श प्रारंभ होता है और नैमिषारण्य जो वर्तमान समय में सीतापुर उत्तर प्रदेश में है, यहां पर यज्ञ भूमि के लिए स्थान निर्धारित किया जाता है। गोमती नदी के तट पर है यह स्थान और यज्ञ की पूर्णता के लिए अश्व और सेना दोनों का प्रक्षेपण किया जाता है। यह परंपरा थी कि एक अश्व के साथ में एक सेना चलती थी चक्रवर्ती सम्राट की। जो मूल दस्ता होता था सेना का अश्व के साथ में, उसमें केवल 400 सैनिक होते थे, बाकी सेना पीछे हो। और उस घोड़े अश्व जो भी पकड़ लेता था उसे चक्रवर्ती सम्राट की सेना से युद्ध करना होता, हारना भी लगभग तय ही होता था, क्योंकि अश्वमेध यज्ञ तो वही करता था जो पहले से ही अपना उत्कृष्ट सैनिक अभियान पूर्ण कर चुका था। ऐसे सेना चली और शत्रुघ्न के नेतृत्व में चली सेना, वही इसके नियंत्रक बनाए गए। निर्बाध यात्रा शुरू हुई अयोध्या से और शत्रुघ्न ब्रह्मावर्त से होकर के निकले वही बिठूर कानपुर। ये क्षेत्र तो वैसे ही कौशल राज्य के अधीन था, इसलिए यहां पर किसी चुनौती की बात तो किसी के मन में थी ही नहीं। आप देख रहे हो मेरे राम कि घटनाएं लौट लौट करके केंद्रित हो रही हैं ब्रह्मावर्त। शत्रुघ्न और ब्रह्मावर्त और सीता और लव कुश का एक पूरा संगमन सा बन गया है यहां। लेकिन क्या हुआ, सेना जा रही है शत्रुघ्न की, तो अचानक दो बालक प्रकट हो गए और राम के अश्व को रोक लिया और शत्रुघ्न को युद्ध के लिए चुनौती दे डाली दोनों बालकों। शत्रुघ्न देख रहे हैं कि बालकों के पास धनुष बाण है लेकिन सेना नहीं। बालकों के निकट पहुंचकर रामानुज ने देखा तो वो बालकों को पहचान गए, ये वही बालक हैं जिनको रामानुज ने, शत्रुघ्न ने कुछ समय पहले ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में राम कथा गाते सुना। क्योंकि वाल्मीकि ने जब सृजन कर लिया, प्रणयन कर लिया राम कथा का, तो उसे सिखा दिया था लवी कुश को, लव कुश को, कि तुम गाओ इसको। तो ये वही बालक हैं, पहचान गए, लेकिन जो पहचान है वो अधूरी थी मेरे राम। शत्रुघ्न पहचान तो गए लेकिन जान नहीं पाए कि इन बालकों के जन्म के समय भी शत्रुघ्न वही थे और इनका मुख दर्शन किया था। और रामानुज ये भी नहीं जान पाए कि ये दोनों बालक राम के पुत्र हैं और वो इनके चाचू हैं, नहीं जाने। बालक युद्ध की जिद कर रहे थे, अल्प आयु के बालकों से युद्ध नहीं किया जा सकता, युद्ध की मर्यादा है, और वो भी आश्रमवासी बालकों से। शत्रुघ्न ने बालकों की प्रशंसा की और फिर उनसे रामकथा गायन के लिए कहा और उन्हें बहला फुसला करके वापस भेज दिया। शत्रुघ्न को याद है कि कुछ समय पूर्व मधुपुरी से अयोध्या जाते समय वो ऋषि के आश्रम में गए थे और वो याद उनके अंदर कंटिन्यू है कि तब उन्होंने इन बालकों को देखा और सुना था। लेकिन बात वही है मेरे राम कि इसके बाद और इसमें जो छुपी हुई कथा है वो नहीं जानते थे शत्रुघ्न। अश्व ने अपनी परिक्रमा पूरी की, लौट आया अश्व और अश्वमेध यज्ञ की तैयारियां शुरू हो। कैसी विचित्र आर्य परंपरा है, राम तुम भी सोच के देखो कि जो अश्व सम्राट की यश पताका लेकर पूरे राम राज्य में घूमता रहा और कुशलता पूर्वक लौट करके राजधानी आया, अब उसी अश्व की बलि चढ़नी है यज्ञ में और उसका प्रसाद बटना है सारे ब्राह्मणों के बीच में। अथक सेवा का मूल्य इस प्रकार चुकाया जाना अपने आप में कैसी विचित्रता है और एक जुगुप्सा सी उत्पन्न होती है। खैर, यज्ञ तो होना है, बलि भी चढ़नी है। लक्ष्मण और शत्रुघ्न ने नैमिषारण्य में एक नई अयोध्या बसा दी है। विभिन्न मित्र राजा इस यज्ञ में आमंत्रित थे। धर्म राज्यों का एक नया, धर्माचार्यों का एक नया वर्ग पूरा जो बन गया है वो भी आ गया है इस नए यज्ञपुरी में। ऋषि मुनियों के परिवार पधार रहे हैं, राज परिवार को तो आना ही है। नैमिषारण्य में शिविरों पर फहराती पताकाएं अपने स्वामियों का परिचय दे रही हैं। कैसा दृश्य बन गया है मेरे राम, लेकिन ऐसे यज्ञ पूरा नहीं हो सकता। ऐसे यज्ञ पूरा नहीं हो सकता, धर्माचार्यों ने राम को निर्देश दिया है कि यज्ञ से पूर्व सीता की मूर्ति स्थापित की जानी है। सोने की मूर्ति स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है। आर्यों की परंपरा है, बड़े मजेदार परंपरा है मेरे राम। आर्य परंपरा बन गई थी कि यज्ञों की शेष सामग्री का अधिकारी अनुष्ठानिक ब्राह्मण ही होते हैं। इसीलिए जो यज्ञीय पुरोहित हैं उन्हें आदाई कहा गया। यानी यज्ञ में जो कुछ भी सामग्री का प्रयोग होना है और जो शेष रह जाएगी, कुछ तो हवि में चली जाएगी, वो तो धूम्र वलय बन करके चली जाएगी, अग्निदेव उन्हें धूम्र वलय में परिवर्तित कर देंगे, लेकिन जो शेष रह जाएगा उस सब का जो स्वामित्व है वो यज्ञीय पुरोहितों का है। मेरे राम, यही जो अवधारणा है, नियम है, धार्मिक कार्यों पर भी लागू होता है। इसीलिए कई बार लोग नाराज हो जाते हैं कि ब्राह्मण लोग जब कोई धार्मिक कार्य पूरा कराते हैं तो जो कुछ भी चढ़ावा और सामग्री होती है वो उसको अपने पास रख लेते हैं। ये उनका हक है, ये उनका अधिकार है, इसमें वो कुछ गलत नहीं कर रहे, वो लालची नहीं है। नहीं, ये वैदिक परंपरा के आधार पर उनका अधिकार है और वो उसके अधिकारी हैं। अब वो ना ले जाए, छोड़ जाए, ये उनकी अपनी इच्छा है, कुछ छोड़ भी जाते हैं लेकिन इसमें उनका कोई दोष नहीं, आदाई है ब्रह्म। तो यहां मामला क्या है मेरे राम, आप जान गए हो कि मूर्ति तो यज्ञ की शेष सामग्री ही रहेगी और वो भी मूर्ति काहे की है, सोने, तो किसे मिलेगी, पुरोहितों। ऐसे प्रस्ताव किया गया, यज्ञीय सामग्री का संकलन भी बड़ी मात्रा में किया जा रहा है। सीता की मूर्ति क्यों चाहिए? इसलिए चाहिए क्योंकि शतपथ ब्राह्मण कहता है अपत्नी को अयज्ञ, यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ, यज्ञीय ग्रंथ के बिना पत्नी के यज्ञ नहीं हो सकता, और वहीं और यहीं पर पत्नी का स्थान तो दाया हो जाता है यज्ञ में, धर्म में दक्षिणे पत्नी यज्ञ, और सब जगह बाया है, वामा है, लेकिन यहां दाया स्थान। तो बिना पत्नी के कैसे होगा यह? इसलिए पत्नी नहीं है और चूंकि जीवित है आ नहीं सकती, निर्वासन हो गया है, इसलिए उनकी मूर्ति बनाई। चूंकि राजा की पत्नी की मूर्ति बननी है, और वैसे भी मूर्ति बनाने के लिए विधान है मूर्ति कला में भी, अगर मूर्ति की पूजा होनी है उसे मानवीय रूप में देखना है और यज्ञीय रूप में देखना है और प्रतिष्ठित करना है, तो यह तो मूर्ति धातु की हो, सोने की हो, चांदी की हो, अष्ट धातु की हो, या लकड़ी की हो, धातु हो या लकड़ी, या फिर मिट्टी हो, पत्थर हो। तो ऐसा नहीं है कि किसी भी चीज की मूर्ति बनवा लो। जो मूर्ति बनने का जो प्रारंभ है और जो पहली मूर्ति भारत में बनी और विश्व में तो बनी नहीं थी, वो तो हड्डी की थी, दैट वॉज द बोन स्टैचू, इलाहाबाद के पास से मिले हैं, मातृ देवी की मूर्ति है लेकिन वो बोन की है, हड्डी। फिर जाकर के सिंधु घाटी सभ्यता में मातृ देवी की मूर्तियों का निर्माण हुआ, वो धातु का सील। तो ऐसे मूर्ति का विकास शुरू होता है, तो सोने की मूर्ति का यहां प्रावधान किया जा रहा है, और बड़ा उत्साह है, उल्लास है, पूरे यज्ञ भूमि में लंबे अंतराल के बाद में तमाम राम के पूर्व परिचित राजे महाराजे संत सब आ रहे हैं, मिल रहे हैं, राम से मिल रहे हैं, लेकिन राम तो किसी से भी नहीं मिल रहे हैं मेरे राम, कि राम तो अपने से भी नहीं मिल पा रहे हैं, तो किसी दूसरे से कैसे मिलेंगे? मानव है मेरे राम, मानव है मेरे राम।